समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हमारे देश की आन बान और शान, हमारे देश का ध्वज, हमारे देश का झंडा, हमारे देश का तिरंगा हर भारतवासी को ऐसा गर्व महसूस कराता है कि हर भारतवासी के दिल से यही आवाज निकलती है कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। वेल, इसी प्रारंभिक विचार के साथ आइए शुरू करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे, जिसे लेकर आप पहुंचे हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
यस रवि, ऑफ कोर्स नमस्कार लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, अ हार्टफेल्ट हेलो फ्रॉम शगुन हियर एंड रवि। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड यस, the song, it definitely tells us about our national flag. Well, the canvas of Indian soldiers' bravery, it extends far beyond the confines of the traditional war zones. It paints itself in the silent resilience of soldiers, swift response, and also their unwavering dedication. Well, our hearts, they swell with awe as we remember, reminding us of the extraordinary tapestry of Indian valor woven with threads of courage, of sacrifice and of service. Well, we don't merely celebrate these heroes, we become immersed in their narratives, carrying their lessons like burning torches that illuminate our journeys. With that being said, let's begin our program. Let me give a brief detail to our listeners, Ravi. First, we'll give you national and international news. Then, we'll provide you Metro City updates and we'll explore today's history, that is 23rd of May. First, we'll begin with the headlines.
जी बिल्कुल, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में शुरू हो रहे पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करने के साथ साथ वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इसमें मंत्री स्तरीय सत्र, व्यवसाय से सरकार सत्र, बैठकें, स्टार्टअप और नीति की प्रदर्शनी तथा निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्र मंत्रालयों द्वारा की गई संबंधित पहल शामिल है। निवेश प्रोत्साहन के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित क्षेत्र, कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी सक्षम सेवाएं, बुनियादी ढांचा और रसद, ऊर्जा तथा मनोरंजन और खेल शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दो दिन के सम्मेलन के साथ ही पहले से चल रहे रोड शो, गोलमेज बैठकें भी सम्पन्न हो जाएंगी।
India has welcomed the signing of the treaty between the United Kingdom and Mauritius on the return of Mauritian sovereignty over the Chagos archipelago, including Diego Garcia. External Affairs Ministry said in a statement that the formal resolution of the long-standing Chagos dispute through this bilateral treaty is a milestone achievement and a positive development for the region. This is further to the understanding between the two sides reached in October last year and marks the culmination of the process of decolonization of Mauritius in the spirit of international law and rules-based order.
वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी के अनुसार सकल रोजगार में वृद्धि के कारण भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 0.2% रहने की संभावना है। दूसरी ओर एजेंसी ने चीन के विकास अनुमान को घटाकर 4.3% कर दिया है, जो पहले 4.6% था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पिछले महीने जारी रिपोर्ट के अनुसार भी भारत सबसे तेज गति वाला प्रमुख देश बना हुआ है और ये अगले 2 वर्ष में 6% से अधिक की वृद्धि वाला एकमात्र देश होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 120 से अधिक देशों के विकास पूर्वानुमान में कटौती की है।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Regional Conference of India's Ambassadors in Europe in Berlin yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed Operation Sindoor and India's message of zero tolerance for terrorism. They also deliberated on various aspects of more deeply engaging Europe at a time of change.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य लोगों पर किरू पनबिजली परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने किरू पनबिजली परियोजना के निर्माण में 2200 करोड़ रुपए के ठेके में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। पिछले वर्ष सीबीआई ने इस संबंध में दिल्ली और जम्मू में 8 स्थानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने जिन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है उनमें चिनाब घाटी बिजली परियोजना के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, परियोजना के अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का ठेकेदार शामिल है।
द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बार्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम टेकिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। US Department of Homeland Secretary Christine Noem has written a letter to the Harvard University in this regard. She said it's a privilege, not a right, to be able to enroll foreign students at the university. We have more on this from our correspondent.
In her letter, Department of Homeland Secretary said this move by the Trump administration will force existing students to transfer to other schools or lose their legal status. She said that the action should not surprise the university authorities as it was inevitable as the university failed to comply with the demands of US government. She said, "The move will send a clear signal to Harvard and all universities that Trump administration will enforce the law and root out the evils of anti-Americanism and anti-Semitism in society and campuses." Noem said, "If Harvard wants to continue enrolling foreign students, the university will have to comply with the Trump administration within 72 hours. She said US government is holding Harvard accountable for fostering violence, anti-Semitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus. Harvard University has said that the move is a retaliatory action which can cause serious harm to the university." Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में श्रीनगर एयरबेस की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों को जून 1967 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली। वे घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित ग्नेट टुकड़ी में पायलट थे। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा हुआ था कि वह श्रीनगर में अपना हवाई रक्षा विमान अड्डा नहीं बनाएगा, इसलिए पाकिस्तान के साथ शत्रुता शुरू होने पर जल्दबाजी में श्रीनगर लाए गए पायलट न तो इलाके से परिचित थे और न ही कश्मीर की कठोर सर्दियों से परिचित थे। फिर भी युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर सिखों और उनके सहयोगी ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के एक समूह ने हमला किया। दुश्मन के विमान के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करना जानलेवा खतरे को आमंत्रित करना था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने ग्नेट को उड़ाकर दो हमलावरों को उलझा दिया। आखिरकार उनके विमान पर आक्रमण में वे शहीद हो गए। उन्होंने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया क्योंकि दुश्मन के विमान श्रीनगर शहर और हवाई क्षेत्र पर अपने इच्छित हमले को आगे बढ़ाए बिना भाग गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों को सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Yes, now we'll move on to the world of sports. In IPL cricket, Lucknow Super Giants recorded a 33-run win over table toppers Gujarat Titans at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. We have a detailed report from Sports Desk.
Lucknow Super Giants gave a huge blow to Gujarat Titans' top two hopes in the points table. After being invited to bat first, Lucknow Super Giants scored 235 for 2 in stipulated 20 overs, with Mitchell Marsh made an IPL 100 who was also adjudged player of the match. In reply, host Gujarat Titans were restricted to 202 runs. Today, Royal Challengers Bengaluru will face Sunrisers Hyderabad in Lucknow. The match will begin at 7:30 p.m. Moving ahead, the BCCI's Junior Cricket Committee announced India's under-19 squad for the upcoming tour of England, scheduled from 24th of June to 23rd of July. Ayush Mahatre has been named as captain, while Abhigyan Kundu will co-lead the team as vice-captain. The 14-year-old sensation Vaibhav Suryavanshi has also been included in the squad. Next update is from the world of hockey, where Hockey India announced a 24-member Indian men's hockey team for the European leg of FIH Hockey Pro League 2024-25, which is scheduled to take place in Netherlands and Belgium next month. At last, the Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya, yesterday held a virtual meeting with more than 300 cycling clubs of Namo Fit India Cycling Club. In a social media post, the Union Minister said that during the meeting, efforts were discussed to popularize cycling as a fashion among the society. Chirag Jha, Sports Desk.
To ye the ab tak ke kuch mukhe samachar. और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
ऑफ कोर्स रवि, फर्स्ट बिगिनिंग विद चेन्नई, द फर्स्ट अपडेट इज फ्रॉम चेन्नई। वेल, डॉक्टर्स परफॉर्म्ड अ सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट यूजिंग रोबोटिक आर्म्स फॉर अ 5-year-old पेशेंट एट चेन्नई। द बॉय हैड अ यूरिया साइकिल डिफेक्ट, अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स हिज बॉडीज एबिलिटी टू प्रोसेस एंड रिमूव अमोनिया, अ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। The doctors opted for a minimally invasive surgical approach, after which the child was discharged in less than a week, compared to hospital stay at least 3 weeks in traditional open surgery. Dr. Naresh Anmugam said that the boy is amongst the youngest recipients of a robotic liver transplant globally. The doctor said it was due to a genetic condition that his liver did not function properly. So this is an achievement that I'm talking about.
Gee.
Now moving on to Bengaluru. Due to the significant rainfall in Bengaluru, 63 out of 183 lakes have reached full capacity. The total storage capacity of the lakes within the municipal corporation limits in Bengaluru is 32,514 million litres. Due to the steady rainfall in the city for a week, the lakes received steady inflow. As on date, all the lakes together have 26,056 million litres of water in Bengaluru. In April, only 3 lakes were filled to capacity, with around 63 lakes nearing complete dryness. The Special Commissioner of the Forest, Environment and Climate Change Management, Preeti Gehlot, has informed that cleaning and maintenance activities are currently underway at the sluice gates and also within the filled lakes. The workers are engaged to remove waste, including debris, plastic and other refuse from the lakes and associated storm water drains to ensure proper flow and hygiene. My next update is from Hyderabad. The Miss World 2025 pageant has reached a vibrant milestone, with 24 finalists being announced for the prestigious talent competition. The event has consistently showcased the creativity, passion and cultural heritage of young women from around the world. The organizers announced that nearly 100 contestants from across the globe delivered unforgettable performances that ranged from classical music and soulful singing to expressive dance in traditional cultural art forms, making this year's talent showcase one of the most dynamic in recent memory. These 24 extraordinary women will now compete in the Talent Challenge final, an anticipated highlight of the pageant. The winner will earn a coveted fast-track spot into the top 10 of her continental group, bringing her one step closer to the Miss World crown. Meanwhile, a group of 40 European Miss World contestants visited Shilpa Ramam in Hyderabad, getting a first-hand experience of Telangana's arts and craft heritage. The delegates visited the village museum and explored various artisan stalls. They viewed life-sized models of rural homes and spoke with craftspeople about their work. They interacted with the artisans and members of women self-help groups. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Ravi will give you the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata, listeners.
जी बिल्कुल, तो शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित केंद्र तथा दिल्ली सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान श्री शाह ने जल शक्ति मंत्रालय को सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक एसओपी बनाने के निर्देश दिए, जिससे उनकी गुणवत्ता, रखरखाव और डिस्चार्ज के मानदंड स्थापित किए जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वे वंदना स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अस्पताल संरचनात्मक परियोजना की प्रगति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और विभिन्न योजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के जुलाई में राजधानी में होने वाले रोजगार मेले को लेकर दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने कल रोजगार निदेशालय के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रोजगार मेले के आयोजन स्थल के चयन, प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या, संस्थानों द्वारा भेजे जाने वाले आमंत्रण, संभावित नियुक्तियों की संख्या और भाग लेने वाले नियुक्ताओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने बताया कि मेले के माध्यम से रोजगार तलाशने वाले युवा और रोजगार देने वाले संस्थान सीधे संपर्क कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। बीड, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर के बाद अब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रोहा एमआईडीसी क्षेत्र में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 105 करोड़ रुपए की लागत से नया आविष्कार, नवाचार, इन्क्यूबेशन और प्रशिक्षण केंद्र या CIIIT स्थापित किया जाएगा। कल जारी आधिकारिक मीडिया बयान के अनुसार टाटा टेक्नोलॉजी ने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को केंद्रीय मंजूरी का पत्र भेजा है। इस केंद्र के कारण रायगढ़ जिले के युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार अत्याधुनिक AI तकनीक से रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कल कालबा देवी और गिरगांव क्षेत्रों में इन सीटू पुनर्वास योजना के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों को आवासीय इकाइयों के आवंटन के लिए सफलतापूर्वक कंप्यूटरीकृत लॉटरी आयोजित की। लॉटरी कार्यक्रम मुंबई मेट्रो लाइन 3 परियोजना के पुनर्वास प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नव विकसित K3 ब्लॉक में विभिन्न आकारों की कुल 145 आवासीय इकाइयां कालबा देवी के 90 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आवंटित की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता की ओर। मौसम विभाग ने 28 और 29 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस महीने की 27 तारीख को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। दूसरी ओर विभाग ने बताया है कि अनुकूल परिस्थितियों के कारण पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में आज भी बारिश होगी। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी FM गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो शगुन, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।
राइट।
न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और कोलकाता की अगर बात करें तो वहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा या गरज के साथ तूफान की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
Focusing now on Chennai, it is expected to have a generally cloudy sky with light rain here as well. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Now Hyderabad, it is expected to have a generally cloudy sky with again one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between minimum of 25 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
तो शगुन, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें और अपने श्रोताओं को ये बताएं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ, हम बताना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस है जो हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। विश्व भर में कछुओं की घटती संख्या को देखते हुए लोगों में इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाने लगा है। 23 मई को पूरा विश्व मिलकर इस दिन को मनाता है और शगुन कछुआ एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत से लोग शुभ मानते हैं और उनकी कई प्रजातियों को घर पर भी रखते हैं।
ऑफ कोर्स रवि, व्हेन आई हैव हर्ड दैट
जी
Also, turtles, they are a type of reptile that exist in environments throughout the world. And they have found their way into literature, into poetry and also parable through the world's history. Well, World Turtle Day, it reminds us that these noble reptiles, their place in the world and encourages people to take action to help protect both the common pet turtle and the ever endangered. Also, I'll just like to share some travel or life lessons we can learn from turtles.
Ji.
It's really fun. It's okay to travel at your own pace, like the turtle does. Well, slow down, enjoy the journey. Of course, slow down.
हमने बचपन में वो कहानी तो सुनी थी ना,
कछुए
और खरगोश की.
Yes, exactly. I was pointing to that only. Go with the flow when you can, but also trust your instincts and spend more time at the beach.
Ji.
Right?
और शगुन, आपको मालूम है कि सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला कछुआ जो था उसका नाम क्या था?
Give this to you, just tell us.
उसका नाम था हनाको कछुआ
oh,
जो लगभग
wow.
226 वर्षों तक जीवित रहा और इसकी
Interesting
मृत्यु
to
हुई,
know that.
बिल्कुल, और इसकी मृत्यु हुई 17 जुलाई 1977 को।
Wow. Our listeners will be, you know, very intrigued to know this.
जी, और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
Of course, we'll take our listeners way back in time. In the year 1805, Lord Wellesley, Governor General of India, issued a permanent provision for the Delhi Mughal Emperor. In the year 1903 now, Dramini Roy, famous painter, joined Government School of Arts and Crafts at Calcutta.
1949 में आज ही के दिन पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था।
इंडिया 1967 साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड नाउ इन द ईयर 1984 पचेंद्रीपाल एन एम्प्लॉई ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील को लिमिटेड एट जमशेदपुर कॉन्कर्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड फिफ्थ वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस वेरी फीट।
2008 में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा डिस्टिलरी को ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था और 2016 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया था। और शगुन, अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों और जयंतियों के बारे में जानकारी देने का। तो पुण्यतिथियों के क्रम में आज सबसे पहला नाम है राखाल दास बंदोपाध्याय का, जिनका जन्म हुआ 12 अप्रैल 1885 मुर्शिदाबाद बंगाल में और निधन 23 मई 1930 कलकत्ता में। राखाल दास बंदोपाध्याय भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेता थे। ये भारतीय पुराविदों के उस समूह में से एक व्यक्ति थे जिसमें से अधिकांश ने 20वीं सदी के प्रथम चरण में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातत्विक उत्खनन, शोध तथा स्मारकों के संरक्षण में विशेष ख्याति प्राप्त की थी।
Yes, the archaeologist, novelist and also museum expert. Well, the discoverer of the antiquity of Mohenjo-Daro, the principal site of the Indus Valley civilization through excavations.
Bilkul.
Well, listeners, today we are also remembering Henrik Ibsen, playwright, theatre director and poet. He's often referred to as the father of prose drama and is one of the founders of modernism in the theatre. His major works, let me name two or three of them, they include Brand, Peer Gynt, also third one is An Enemy of the People.
जी, और पुण्यतिथियों में अब जानकारी चंद्रबली सिंह के बारे में, जो एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक एवं आलोचक भी थे। आपका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1924 गाजीपुर में, लेकिन आपने इस नश्वर संसार से विदा ली 23 मई 2011 वाराणसी में। गाजीपुर में जन्मे चंद्रबली सिंह ने लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य तथा आलोचना का जनपक्ष नामक शीर्षक से पुस्तकों का प्रकाशन किया। इनकी गिनती एक उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक के रूप में भी की जाती थी। और यही नहीं, शगुन, चंद्रबली सिंह जनवादी लेखक संघ के संस्थापक, महासचिव और बाद में अध्यक्ष भी रहे। और जिन रचनाओं को इन्होंने कलमबद्ध किया उनमें शामिल हैं लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य तथा आलोचना का जनपक्ष जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं.
यस, नाउ मूविंग ऑन, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग बैरन ऑगस्टिन लुई कॉशी, मैथमेटिशियन, इंजीनियर एंड अ फिजिसिस्ट. He was one of the first to rigorously state and prove the key theorems of, you must have heard it, even students, you must have heard it, calculus, thereby creating the real analysis. Pioneered the field complex analysis and the study of permutation groups in abstract algebra. Cauchy also contributed to a number of topics in mathematical physics, notably continuum mechanics. Well, a profound mathematician, Cauchy had a great influence over his contemporaries and his successors. He was a prolific worker. He wrote approximately 800 research articles and 5 complete textbooks on a variety of topics in the fields of mathematics and also mathematical physics. Baron Augustin Louis Cauchy.
और जयंतियों में आज सबसे पहला नाम है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कमलाबाई होसपेज का, जिनका जन्म हुआ 23 मई 1896 को और निधन 15 नवंबर 1981 को. उन्हें कमलाताई होसपेज के नाम से भी जाना जाता है. वे नागपुर स्थित मट्रू सेवा संघ नामक सामाजिक संस्था की सह संस्थापिका थीं. इसमें उनकी सहयोगी वेणुताई नेने भी थीं. कमलाबाई होसपेट को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से 1961 में और बाद में जमुना लाल बजाज पुरस्कार से 1980 में सम्मानित किया था.
वर्ल्ड टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग कार्ल लिनेयस. इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे. द बायोलॉजिस्ट एंड आल्सो फिजिशियन हु फॉर्मलाइज्ड बायोनिमल नोमेनक्लेचर, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स. He is known as the father of modern taxonomy also. Most of his writings, they were in Latin, and his name is rendered in Latin as Carolus Linnaeus. And he encouraged the students to use the system which he provided by recording and going and collecting information on the countries, on Sweden's actually natural resources. He continued to lecture also in the field of studies, in his field of studies also, and spent most of his time traveling. He was very popular and influential as a professor and as a scientist, very charismatic teacher, surrounded himself with students, the most gifted of whom he sent on voyages of exploration.
अच्छा ये बताइए शगुन, स्कूल टाइम में आप मैथमेटिक्स में कैसी थीं?
I was fine. I was doing fine. I liked mathematics, basically. अच्छा, yes, that's why I discussed a mathematician today. That was the reason.
मेरे पास जो अगला नाम है वो एक मैथमेटिशियन का ही है. जयंतियों में अगला नाम है प्रहलाद चुनिंदाल वैद का, जो भारत के उन गिने चुने गणितज्ञों में से एक रहे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और दूरगामी योगदान दिया था. आपका जन्म हुआ 23 मई 1918 को और निधन 12 मार्च 2010 को. वे न सिर्फ एक मशहूर गणितज्ञ थे बल्कि एक शिक्षाविद भी थे और वे चाहते थे कि प्रयास करते थे कि गणित बच्चों के लिए सुगम और रुचिकर बने और वे मानते थे कि गणित सिखाना शायद कठिन है मगर गणित सीखना कठिन नहीं है.
इंटरेस्टिंग लाइन देयर दैट यू डिस्कस.
मैंने बताया अभी.
यस डेफिनेटली वेरी गुड. नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट अ जैज गिटारिस्ट, Joe Pass. Well, he has been referred to as a virtuoso. He recorded and performed live with pianist Oscar Peterson and also composer Duke Ellington and vocalist, this must be, you must know that, Ella Fitzgerald. He is generally esteemed as one of the most notable jazz guitarists of the 20th century for his solo guitar playing. And one such recording I found for our listeners, Ravi here, because this is Summertime. So this is Summertime by Joe Pass.
और जयंतियों के क्रम में अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं वसुंधरा कोमकली के बारे में, जिनका जन्म हुआ 23 मई 1931 को और इन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली 29 जुलाई 2015 को. वसुंधरा कोमकली भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थीं. वे भारत के प्रसिद्ध संगीत घराने ग्वालियर घराने के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थीं. वसुंधरा कोमकली को वसुंधरा ताई के नाम से भी जाना जाता था. वे बहुत ही सुघड़ गायिका थीं. उन्होंने पंडित कुमार गंधर्व की गायन शैली को आगे बढ़ाया और देवास का नाम रोशन किया. तो आइए फिर सुन लेते हैं वसुंधरा कोमकली के स्वर में राग केदार पर आधारित ये संगीत रचना.
Yeah.
चलते चलते आज का विचार कि माँ बाप के पैर छूने का मजा ही कुछ और है, जितना नीचे झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।